बुनियादी चीज सोचने की यह है कि इस्लाम जो उतारा गया उसका मकसद ये था कि हम अपनी ज़ाहरी तौर तरी सूरत से बहुत पारसा और आला दर्जे के मुसलमान दिखाई दें, या उसका मकसद ये था कि हमारे अमाल इस चीज़ की गवाही दें कि हम बहुत आला दर्जे के मुसलमान हैं। अल्लाह ताला रोज़ मैशर किस बात पर सजा और जजा देगा कि हम ज़ाहरी शक्ल सूरत में बहुत आला पाए कि मुसलमान दिखाई दे सके, या अपने अमाल में हम उसके मयार के मुताबिक मुसलमान, फैसला किस चीज पर होगा। तो किसी शख्स के बारे में ये फैसला करना कि वो सरसरी अंदाज के मुसलमान थे या दिल की गहराइयों से मुसलमान थे, तो हमें तो फिर रब की सुन्नत पे अमल करना होगा कि जो कुछ वो शख्स डिलीवर कर रहा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, दूसरे लफ्जों में जिसे हम अमाल कहते हैं, उसके तौर तरीके अमाल, उसके बिहेवियर्स टूवर्ड्स अदर्स, वो अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद के मुताबिक है या उसका भी या उसकी हदूद के मुताबिक फैसला हो जाए। कायद आजम की जिंदगी के बारे में जो कुछ अब तक मैंने पढ़ा है तो उसके सुना, एक चीज वाजे होती है कि उन्हें कभी गलत बयानी नहीं। एक सरकारी मुलाजिम सरकार से मुतालिक कागज लेकर उनके पास आ गए कि इससे मुसलमानों को फायदा हो सकता है, आपने उसे डांट के वापस कर दिया कि बदध्यान सरकारी राज मुझ तक पहुंचा दी। अभी तक कहीं ये मैं नहीं पढ़ सका उनके बारे में लिखा हुआ कि उन्होंने किसी का हक मारा हुआ हो, किसी का कुछ देना हो, किसी का कर्ज अदा न किया हो। तो एक अच्छे मुसलमान की पहचान क्या है? जब बोले वो सच बोले, वादा करे तो पूरा कर दे, किसी का हक ना मारे। तो इसी पर फैसला हो जाएगा कि वो सरसरी अंदाज के मुसलमान थे। ये तो यहाँ तक तो जाने की नौबत ही नहीं आती कि वो कुरान पाक की कोई आयत पढ़कर रोते थे या हंसते थे, या उनका लिबास क्या था। बात तो असल डिलीवरी की है, आप डिलीवर क्या करते हैं। फैसला तो उस पर रोज़े मेजर भी उसी पर होगा, फैसला अल्फाज पर नहीं होगा, अहलिये पर नहीं होगा, अमाल पर होगा। तो अल्लाह की सुन्नत पे फर्क लीजिए। इसी ज़मीन में मुझे बात ख्याल आया, दरवेशों और फकीरों के यहाँ एक चीज पर बड़ी खामोशी के साथ अमल होता है। दरवेशों के यहाँ तो वैसे भी बुलंद बांग दावे और नारे ममनू हैं। अल्लाह का एक हुक्म है कि बदी का जवाब बदी से न दो, बदी का जवाब नेकी से दो, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बहुत जमाना पहले बच्चा था, भूख से मजबूर होकर उसने एक नान बाई की दुकान से तंदूर से रोटी उठा ली और दौड़ लगा दी, पकड़ा गया और उस तंदूर वाले ने पुलिस ने उसे मारा पीटा और उसको छोड़ दिया। तंबीह करके लेकिन उसका एक असर ये हुआ कि बजाय इसकी कि बच्चा मार खा के सुधर जाता, उसके अंदर बगावत का जज्बा पैदा हो गया और नतीजा ये हुआ कि उसके बाद उसने चोरी को बतौर पेशा अपना लिया और अपने साथ लोगों को मिलाना शुरू कर दिया। चोरी में इतना माहिर हो गया पूरे बगदाद में उसका नाम इक्का चलने लगा। उसके नाम पे छोटे मोटे चोर भी चोरियां करने लगे थे। इब्ने सबात वो उसके ग्रो का आदमी कमाल फनकारी से वो चोरियां करता था, डाके मारता था। जब बहुत ज्यादा तूफान उठा चोरियों का डाकू का, तो गवर्नमेंट ने बाकायदा मुहिम चलाई उसके खिलाफ। नतीजे में वो पकड़ा गया, जज के यहां पेश किया गया। काजी साहब ने हुक्म दिया कि इसका एक हाथ काट दिया जाए, काट दिया गया। लेकिन नुकसान ये हुआ कि हाथ कटते ही उसके अंदर बगावत के जज्बा और पैदा हो गया। उसने दूसरी तरह से एहतियात हुआ, नया ग्रो बनाया और नए तरीके से फिर पकड़ा गया, उसे कैद में डाल दिया जेल। तो जब जेल से वो रहा हुआ कई साल की सजा के बाद, तो जेल से निकलते ही उसे ये फिक्र हुई कि मैं अपने पुराने पेशे मैं दोबारा से लगा चोरी में, और एक हाथ तो था नहीं उसका। रात के अंधेरे में चला जा रहा था तो इस तरफ से रोशनी दिखाई दी, उधर गया तो उसने देखा कि हवेली है। हवेली को देख के अंदाजा हुआ कि यहाँ की बात अमीर आदमी रहता है। मेन गेट पर उसने हाथ रखा तो हैरत अंदेज तरीके से लॉक ही नहीं था, वो खुल गया। तो ये अंदर दाखिल हो गया, लिविंग एरिया था बिल्डिंग, उसके एंट्रेंस पे उसने हाथ लगाया तो वो दरवाजा खुल गया, वो भी लॉक नहीं। अंदर दाखिल हुआ तो सामने एक बड़ा कमरा था। उस कमरे में कपड़े की थान पड़े थे, मोटे कपड़े, एक चटाई थी और वहीं चमड़े का बना हुआ तकिया रखा था, उसके अलावा कुछ था नहीं। इधर उधर देखा हवेली में कुछ भी नहीं था, यही कुल असासा पड़ा था वहां, आदमी कुछ नहीं था। अब इसने कोशिश की थी और कुछ नहीं, तो कपड़े की थान ही ले जाए, खाली हाथ तो वापस न जाए। अब जब उसका गट्ठर बांधने लगा तो एक हाथ से बंधे नहीं, क्योंकि थान भारी थे और इकट्ठे नहीं थे। अब इसी तगड़ो में लगा हुआ था किसी तरह उसकी गठरियां बांध ली। तो सडनली पाँव की चाप सुनाई दी और साथ ही रोशनी आती हुई दिखाई दी। तो इस तरीके से होशियार होता, एक साहब दाखिल हुए थे, बड़े दुबले पतले जिस्म के थे, कमजोर दिखाई देते थे, लेकिन चेहरे पर अजीब तवानाई का एहसास था। तो ये बंदा उनके चेहरे को देख के मभूत हो गया, स्टंट बैठ गया। वो अंदर दाखिल हुए, वो आके उन्होंने पूछा कि कौन हो, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं। तो साथ ही नजर पड़ी कोई कपड़े के थान की गठरियां बांधने की जो कोशिश हो रही थी, उस पर नजर पड़ गई। फरमाने लगी कि वो ये गठरियां मैं बांध के तुम्हारी मदद कर देता हूँ, उनसे शायद बांध नहीं जा रही। इससे बातें करते हुए बैठी और एक बड़ी बड़ा गठर बनाया और एक छोटी गठरी हल्की बनाई। बड़ी गठरी खुद उठाई, उन बुजुर्ग ने जो दुबले पतले से थे, और छोटी गठरी कहने लगी तुम उठा लो, ये हल्की है, इतनी से उठाई जाएगी। तो चलो कहाँ छोड़ कर आना है, सामान मैं छोड़ा था। तो इसको ये ख्याल हुआ कि ये भी मेरी तरह चोर है जी, जो इस तरीके से मेरे कंधे पे रख कर बंदूक चला रहा है। उसने कहा कि शहर के बाहर खुला खंडर है, वहां चले। तो वो चले तो जो गठर था उसके बोझ की वजह से उनको चला नहीं जा रहा था। अब इसको फिक्र ये थी कि कहीं पुलिस का कोई आदमी ना आ जाए या कोई और देख न ले, तो ये बार बार उन्हें डांटता था कि तेज चलो। वो बेचारे तेज चलने की कोशिश करते थे, वो चला नहीं जाता था, ये गालियां देता था, दो तीन जगहों पर ठोकर लगी, गिर भी गए। तो एक जगह इसने उन्हें लात दे मारी, ख्याल नहीं है जल्दी चलो पकड़े जाओगे। बिलाकर वो खंडर तक पहुंच गया, तो जाके उसने कहा कि खंडर का ही कमरा है, इसमें गठर फेंक दो। जब उन्होंने फेंक दिया तो गठर फेंकने के बाद उन साहब ने एक चोर थे माजरत की, भाई मैं माफी चाहता हूं कि तुम्हारी खिदमत करने का जो हक था मैं वो हक अदा नहीं कर सका, तुम्हें रास्ते भर कोक होती रही क्योंकि मैं अपनी कमजोरी की वजह से बोझ तले दबा हुआ था और मैं ये इतना बोझ उठा के तुम्हारी मर्जी के मुताबिक रफ्तार पर चल नहीं पा रहा था, तो तुम्हें बार बार मुझे तंबीह करना पड़ी और गालियां देना पड़ी, मैं इसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। इसने कहा कि ज्यादा बकवास नहीं करो और जो तुमने अपना हिस्सा इसमें से लेना और लेके दबाओ जाओ। तो इंसान ने कहा कि नहीं, तुम मुझे गलत समझे, मैं वो नहीं हूं जो तुम ख्याल करते हो, जहां से ये सामान उठा के लाया हूं मैं उस मकान का मालिक हूं और ये सामान भी मेरा है, तो मुझे इसमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, ये सब तुम्हारा है, ये रख लो। और ये कह के तो वो साहब वहां से रुक सकते, वो साहब तो चले गए वहां से ये सब कहते, लेकिन ये बंदा इतने साबात जो है या वहां परेशान बैठा सोच रहा है कि क्या शख्स था जो कह रहा है कि मैं उसका मालिक हूं और सामान का भी मालिक मैं, सारे रास्ते मुझसे गालियां भी सुनता आया है, लात भी इसने खाई है, अपना सामान यहां छोड़ गया है। इसी परेशानी में सुबह की अजान का वक्त हो गया, उसने एक चादर ओढ़ी और दोबारा उस हवेली की तरफ गया, उन साहब की स्टेटमेंट को वेरीफाई किया। जाके उस हवेली के इर्द गिर्द लोग नजर आए, उनसे पूछा कि इस हवेली में कौन रहता है, इसका मालिक कौन है। तो लोगों ने कहा कि तुम नहीं जानते, यहां तो बहुत ही मशहूर दरवेश रहते हैं जिनका नाम है शेख जुनैद बगदादी। ने कहा कि इस वक्त कहाँ है वो, कि अंदर बैठे हैं क्लास ले रहे हैं अपने चलीजों की। तो ये अंदर दाखिल हुआ तो कुछ 30-40 लोग बैठे थे और शेख जुनैद बगदादी साहब उसी चमड़े के तकिए के साथ टेक लगा के तो दर्श दे रहे थे अपने शागिर्द को, पहचान गया यही साहब। तो ये वहां बैठ गया, जब शागिर्द जा चुके उठा और उठ के उनके पांव पे सर रख के माफी मांगी। उस माफी मांगने के बाद इनकी जो कैफियत तब्दील हुई, तो इब्ने साबात को उस माफी ने शेख अहमद बिन साबात बना दिया, जो जनाब जुनैद बगदादी के इंतहाई करीबी शागिर्दों में और उनके सबसे ज्यादा उनसे इल्म लेने वालों में जिनका नाम सरे फहरिस्त आया बाद में, और वो अपने वक्त में शेख अहमद बिन साबात के नाम से मशहूर थे। अक्सर यहां मैं अर्ज किया करता हूं आप सबकी खिदमत में, درگزر اور اوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو جس کے تمام پہلو واقعتاً ایک نمونہ ہے اور اللہ کی بیان کردہ معیار کے عین مطابق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلی سیرت میں بھی سب سے زیادہ جو نمایاں نظر آتی ہے وہ اف اور درگزر کا درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا اس میں زیادہ تر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی انہی صفات کی وجہ سے آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ نہایت مہربانی کا سلوک کیا ہے. اسی لیے فقیر اس پر عمل کرتے ہیں. یہ تو چونکہ ایک موضوع چل نکلا تھا گفتگو شروع ہونے سے پہلے تو مجھے یہ قصہ یاد آ گیا اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ شاید یہ ایک واقعہ مجھے اور آپ کو درگزر کی طرف لے جائے. گزشتہ نشست میں ذکر روحانی پہلوؤں پر ہو رہا تھا اور اس میں نور سے متعلق باتوں کا ذکر تھا. ایک بہت ایک ایسی بات پر کر رہا ہوں جس کو ہمارے شاید دنیاوی سائنس اسے ہضم نہ کر پائے لیکن حقیقت یہ بھی جہاں نور ہوتا ہے وہاں سیاہی ضرور اندھیرا ضرور ہوتا ہے. ہم میں سے کبھی کسی نے شاید اس پہ تو نبی ہو خانہ کعبہ میں استعمال ہونے والے پتھر سیاہی مائل میں غلاف سیاہ اور تو اور حجرِ اسود سیاہ کیوں. لیکن آج یہ بات جب میں نے آپ کو گوش گزار کی ہے خدمت میں پیش کی کہ یہاں نور ہوتا ہے وہاں سیاہی ضرور ہوتی ہے. ان پتھروں کے سیاہی مائل ہونے کا اور خانہ کعبہ کے غلاف کا سیاہ ہونے کی وجہ خود بخود ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ کا گھر ہے رب کا نور بدلتا ہے. غلاف بھی سیاہ ہے اور پتھر بھی سیاہی مائل. حجرہ اسود جنت سے آنے والی چیزوں میں سے واحد ایک چیز باقی رہ گئی جو وہاں موجود ہے. اس کا تعلق بھی نور سے ہے وہ بھی کیا ہے. حجر اسود کے بارے میں تو ایک روایت یہ بھی ہے جس کے بارے میں نہیں عرض کر پاؤں گا کیونکہ سب تک درست ہے وہ لیکن روایت ہے اس لیے اسے میں بیان کر دیتا ہوں کہ در حقیقت وہ ملائکہ میں سے ایک ہے جسے پتھر کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے اور یہ زمین پر خانہ کعبہ میں نصب شدہ ایک طرح سے میں عرض کر رہا ہوں ایک طرح سے एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन इन ए वे वो लॉ है जिस पर गवाही लिखी जा रही है वहां हाजिरी देने वालों के बारे में, किस किसने वहां हाजिरी दी और किस किस नियत से दी, किस अंदाज में हाजिरी दी, इन ए वे मैंने या फिर अर्ज कर दिया, क्योंकि असल लौहे महफूज तो अर्श पर है। उसके बारे में जब मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जिस तरह से एक मोती मदर पर्ल जो होता उर्दू में गर्जन असली मोती ये कहते हैं, मदर पर्ल का जैसा रंग है इस रंगत की लौहे महफूज है, तख्ते की शक्ल की उससे मिलती जुलती है, जैसे किसी दूरदर्शन नशिस्त में अर्ज किया था कि लौहे महफूज पर सबसे पहले लिखा जाने वाला जुमला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम था और उसके नीचे कलमाए तैयबा लिखा है, उसके किनारों पर उसके किनारे लौहे महफूज के मुनक्किस हैं और कीमती पत्थरों से मुनक्किस हैं। इसीलिए कुरान पाक का हाशिया लगाया जाता है ये याद रखिए, वो लौहे महफूज की उस हाशिए को रिप्रेजेंट करता है कुरान पाक, इसलिए कुरान पाक का हाशिया लगाया जाता है। किसी साहब ने सवाल मुझसे अर्श के बारे में पूछा था तो मैं ये अर्ज कर दूं आपसे कि अर्श तह दर तह ताई है, वहीं पे मकाम नूरुल लका है जो इंसानी आंख से निशादे हैं, उसके बिल्कुल पास मकाम महमूद है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज शरीफ पर जब तशरीफ ले गए तो आपने तशरीफ रखी, वहीं से हम कलाम हुए थे अल्लाह अल्लाह ताला से, वहीं पर कुर्सी कायम है और उस कुर्सी के नीचे नूरुल मरवारीद है और जैसे मैंने अर्ज किया जहाँ नूर होता है वहाँ स्याही और अंधेरा होता है, तो जहाँ नूरुल मरवारीद है कुर्सी के नीचे वहाँ अंधेरा है। और ये अर्ज कर दूँ आपके सवाल के जवाब में कि अर्श मौला की जो तीसरी तह है वो चार पायों पर कायम है और उन चारों पायों को थामे हुए हैं चार फरिश्ते, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, चार फरिश्ते उन पायों को थामे हुए हैं और अल्लाह ने इन्हें कुदरत बख्शी है और ऐसी कुवत बख्शी है कि ये बयक वक्त कई कई काम करते हैं। ये चार तो हैं जो थामे हुए हैं उन चारों पायों को, तरह की कहती है आठ मलाइका, चार तो मैंने आपको दिलवा दिए, बाकी चार में हज़रत रुमायल अलैहिस्सलाम है, हज़रत अतराइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मकनताइल अलैहिस्सलाम। जब रोज़ महशर लौहे महफूज वज़नी हो चुका होगा पहली लोगों की, तो ये फिर आठों मलाइका उसको संभालेंगे, उसे थामेंगे। आठ मलाइका हैं और इन आठों के चार चार पर हैं, جو ضرورت کے مطابق کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں, اور ان کی شکلیں انسان سے مشابہ ہو جاتے ہیں. اور عرش کے ویسے عرش میں 172 محرابیں لیے جا سکتی ہیں, ایک پائے میں نے آپ سے رکھی جن پر وہ قائم ہے, لیکن اس کی محرابیں 172 ہیں. صاحب نے میں یہاں آخری مرتبہ بات کر رہا تھا, اس کے بعد سوال پوچھا تھا, مجھے یاد نہیں کون سا تھے ان کی, یہ میں یاد کر دوں کہ اس کی 172 محرابیں ہیں. آدم علیہ السلام کے نام سے متعلق اس کی یاد آ گئی, یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے یہ بے معنی نہیں تھا. یہ نام اس طرح نہیں رکھا گیا تھا جیسے ہم لوگ نام رکھے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے نام کے تین لفظ ہیں, الف دال اور میم. یہ تینوں حروف در حقیقت ڈپکٹ کرتے ہیں تین میجر چیزیں. حضرت آدم علیہ السلام کا جو پہلا حرف ہے الف, وہ ڈپکٹ کرتا ہے ابتدا و انتہا کو, ازل اور ابد. دوسرا حرف دال دین و دنیا کو ڈپکٹ کرتا ہے, اور تیسرا حرف میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ذات کو ڈپکٹ کرتا ہے. تو یہ ان تین چیزوں کو اکٹھا کر کے اس نام کی فارمل ہوگی. جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے نام کے ساتھ ایک اور نام لکھ دیا جائے, کائنات لرزی, اللہ کے نام کے ساتھ کیسے شریک کیا جائے, پھر حکم ہوا کہ میرے نام کے ساتھ نام تحریر کیا جائے, کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ عرض کیجیے کہ ہماری تعالیٰ آپ کے نام کے ساتھ انسان کا نام کیسے تحریر کر دیا جائے؟ فرمایا کہ نہیں, یہ میری احسن تخلیق ہے. اور یہ نام میرے محبوب کا ہے, تو میرے نام کے ساتھ اسے تحریر کر دیا جائے. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ تحریر ہوا تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سب عشق خدا ہے, محبت خدا ہے, اس کی بھی ایک روحانی وجہ موجود ہے. کافی دیر پہلے میں نے گزارش کی تھی, اللہ تعالی نے اپنے نور سے فردر نور کے دو حصے لیے تھے. ان حصوں میں ایک کا نام نور الہدیٰ المتقین تھا, جس سے تمام فرشتوں کی پیغمبروں کی روحیں تخلیق ہوئیں, اور دوسرا حصہ نور الہدیٰ المومنین کہلایا, اس سے باقی تمام لوگوں کی روحیں تخلیق ہوئیں, انسانوں کی روحیں تخلیق ہوئیں. اس سے پہلے ایک عمل جاری ہوا تھا, یہ تھا کہ نور مروارید وجود میں آیا. نور الہدیٰ کے عین درمیان میں سے برآمد ہوا. جب نور الحدا کے قلب سے نور المروہ بھی برآمد ہوا. تو نور الحدا پسینے سے شرابور ہو گیا, اسی پسینے سے شرابور ہونے کے نتیجے میں شرم و حیا وجود میں آئی, اور اس شرم و حیا سے محبت اور عشق نے جنم لیا تھا. اور یہی محبت اور یہی عشق صرف وجہ تخلیق کائنات ہوا تھا, اور نور المروارید سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تخلیق کی. یہ تخلیق کا ابتدائی عمل ہے, اور یہ تمام کا تمام نور الہدا اور نور المروارید کے ارد گرد گھومتا ہے. اس کی اگلی منازل انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. اسی تخلیق کے ضمن میں یہ تخلیق کس طرح سے درجہ بدرجہ وجود میں آتی گئی, اور یہ پوری کائنات کی شکل ہے. عرض کا تو میں چونکہ وعدہ کر گیا تھا کہ عرض سے متعلق میں اگلی نشست میں جو کچھ میں عرض کر سکتا ہوں وہ میں کر دوں گا, صحیح یا غلط جو بھی وٹ ایور لٹل نالج آئی ہیو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اور ایسی ہی عاجزانہ کوشش میں اگلی اتوار بھی کر دوں گا کہ باقی کائنات کی تخلیق کے بارے میں عرض کر دوں گا آپ کو. لیکن یہ وہ کارخانہ قدرت ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. تو میں بھی شاید اس کی ایک ہلکی سی جھلک پیش کر پاؤں آپ کو, صلی اللہ علیہ وسلم. مکمل علم اس پر کوئی نہیں دے پائے گا. میں تو بہت عاجز اور چھوٹا بندہ ہوں, اللہ کا بہت ہی کمتر بندہ. لیکن جو عالم ہے, صاحب علم ہے, شاید وہ بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. یہ وہ معاملہ ہے جو کسی کی عقل میں سماتا نہیں. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر آپ کو ایک ہلکی سی جھلک تو دکھا سکتا ہے. اسی لیے اس کے اندر بہت سی تشنگی باقی ہے, بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ملتے ہیں. بڑے سے بڑا عالم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے سے قاصر ہو جاتا ہے, کیونکہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ یاد رکھیے. تو یہ مت سمجھیے کہ جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ کل علم ہے یا میں ایک ٹوٹل پکچر پینٹ کر رہا ہوں, ایسا نہیں. اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے, اور وہ بھی میں یقین سے نہیں کہتا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اپنے علم کی حد تک میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا, اور ایک بار پھر میں واضح کر دوں کہ میرا علم بھی ناقص ہے, میری عقل بھی ناقص ہے, اور میں خود بھی ناقص ہوں. غلطی کے بہت اسٹرانگ پاسبلٹیز موجود ہیں کہ میں غلطی کر جاؤں گا. اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کو کوئی بڑی چیز میں نے بتا دی. ہو سکتا ہے کہ میں بالکل غلط آپ کو بتا رہا ہوں. میں انسان ہوں اور بہت ہی ناقص انسان, نہ کہ عقل کا مالک نہ کہ علم کا مالک. کوتاہی ضرور ہوگی, جو کچھ میں بتا سکوں گا میں اگلی اتوار کو تخلیق کائنات کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں.
मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा टॉपिक से रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन समटाइम्स कुर्ब इलाही के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग जो कुर्ब इलाही के लिए आपसे दरख्वास्त करते हैं उसमें समटाइम्स उनको पढ़ने के लिए कुछ दे दिया जाता है, और कुछ लोगों को जो है वो खिदमत खल्क या कुछ इस तरह का बता दिया जाता है। तो आया कि कोई स्पिरिचुअल कैटेगरीज हैं कि जिनमें रूह होती है, तो कुछ लोगों को पढ़ने को कह दिया जाता है या कुछ लोगों को किसी लिबास के लिए या खिदमत खल्क के लिए कहा जाता है, इसको क्यों दिखाना?
हम जिम में जाते हैं और जिम में जाकर उसके मैनेजर से हम ये कहते हैं कि साहब मैं अपनी बॉडी को ट्रिम करना चाहता हूँ और इसे मस्कुलर शेप देना चाहता हूँ। वो आपको इंस्ट्रक्टर के हवाले करता है कि साहब ये आपका इंस्ट्रक्टर है, ये आपको शेड्यूल एक बना देता है कि आपने किस किस मशीन पर कितनी कितनी देर एक्सरसाइज करनी है। जिम एक ही है, मशीन वही है जो लगी है, जो भी है जिस जिसकी रहती है, और वहां जाने वाले तमाम के तमाम इंसान ही हैं, लेकिन हर इंसान का ट्रेनिंग चार्ट जो बनाया जाता है वो दूसरे की निस्बत थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। किसी को लैटरल पुल पर ज्यादा वक्त देने के लिए कहा जाता है, किसी को टर्न टेबल पर ज्यादा वक्त देने के लिए कहा जाता है, किसी को पुशअप्स के लिए कह दिया जाता है, किसी को स्टेप्स के लिए कह दिया जाता है कि तुम ये ज्यादा करो, किसी को ट्रेडमिल पर ज्यादा देर लगा देते, कुछ वेट लिफ्टिंग पर लगा दिए जाते हैं। क्यों? मकसद भी सबका एक है कि वो जिस्म को एक मस्कुलर शेप दे दें, बॉडी ट्रिम हो जाए। रिक्वेस्ट करने वाले भी सभी इंसान ही हैं, उनकी बॉडी फॉर्मेशन एक ही है। बात यह है कि वो इंस्ट्रक्टर अपने काम का माहिर है, वो आपको नजरों में तोलता है कि आपकी बॉडी किस पोजीशन में है, आपको प्रॉपर शेप देने के लिए किस किस मशीन पर आपको भेजा जाना चाहिए ताकि आपके बॉडी के मुख्तलिफ मसल्स जो हैं, एक आदमी की थाईज हैं वो बेतहाशा मोटी हो गई है, बैड बैक, लोअर बैक से नीचे का एरिया उसका फैल गया है बैड बैक, या ये साइड वो हैवी हो गई है बैठने की, तो वो सबसे पहले उन पर काम करेगा, ज्यादा वक्त उन्हीं पर देगा, उसी मशीन पर वो आपको भेज देगा, उस आदमी को दूसरी मशीन पर। कुछ लोगों के बाजू वीक हैं, शेप नहीं लिए हुए, उनको लैटरल पुल पर भेज देगा। कुछ लोगों की पूरी बॉडी फ्रेमों से देनी है, एक सिक्सर में उसे पुशअप पे लगा देगा। कुछ लोगों की काफ वीक हैं, थाई के फ्रंटल मसल्स वीक हैं, उनको वो स्टेप्स पर लगा देगा। तो वो तो ये देखेगा कौन सा इसका एरिया वीक है, उस पर मेजर एम्फोसिस हो जाएगा उसका, बाकी पर थोड़ा सा एम्फोसिस होगा। इसी तरह जब आप कुर्ब इलाही की बात करते हैं तो जिसके पास आप जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे कुर्ब इलाही हासिल करना है और मैं पूरी तरह सिंसियर हूँ, तो वो ये देखता है कि कौन सा एरिया वीक है आपका। एक आदमी की ईगो बड़ी स्ट्रांग है, वो ईगो उसे नहीं चलने देती, तो वो उसे कहेगा मेरे पास रोज आया करो, फला वक्त आया करो, ये वो वक्त होगा जब उसके पास मैक्सिमम लोग हैं, उनके सामने वो आपको डांट डपट शुरू कर देगा। सब अब डांट डपट का और कुर्ब इलाही का क्या ताल्लुक है, लेकिन दर हकीकत वो आपकी ईगो को कुचल रहा है। वो इसलिए हर आदमी को एक मुख्तलिफ नुस्खा दिया जाता है, ये लेकिन इस जिम्न में अभी आपसे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो कुर्ब इलाही और स्पिरिचुअल गेन्स की बात है, इसके लिए बहुत सोच समझ के आदमी को चुनिए अपने उस्ताद के पास। ये गलती ना कर बैठे कि किसी अनाड़ी आदमी के हत्थे चढ़ जाए, तो वो बिल्कुल ही बिगाड़ देगा मामला। और एक चीज मैं वादे कर दूं ताकि आपका वक्त जाया ना हो, कि मैं कतई तौर पे अनाड़ी इंसान ही, मेरे पास गुरब इलाही का कोई वास्ता नहीं। आप इसलिए जहां भी जाएं किसी मंझे हुए उस्ताद के पास, कामिल उस्ताद के पास जाइए, ताकि आपका वक्त जाया ना हो।